ओम शांति। एक दिन शैतान ने इस संसार में एक घोषणा कर दी। वो घोषणा ऐसी थी कि शैतान के पास जितनी भी वस्तुएं थी उनकी नीलामी करनी थी, ऑक्शन। हर वस्तु पर कीमत लिखी गई थी और वो वस्तुएं संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए नीलामी के लिए खुली थी। हर वस्तु पर कीमत, अलग अलग कीमत लिखी थी और बहुत सारे मनुष्य उन वस्तुओं को खरीद रहे थे। भगवान के घर में भी बहुत वस्तुएं थी, परंतु वो वस्तुएं ले लेकर मनुष्य थक गया था। प्रार्थना, ध्यान, शांति, सुख, उसे कुछ और चाहिए था। तो शैतान ने जब अपनी नीलामी की ये वस्तुएं रखी और एक एक वस्तु पर कीमत लिखी तो बहुत सारी चीजें बिक गई। एक वस्तु थी जो नहीं बिक पाई। कुछ वस्तु पर लिखा था बीमारी, कुछ वस्तु पर लिखा था अनिद्रा, कुछ वस्तुओं पर लिखा था ओवरथिंकिंग, अधिक सोचना, कुछ वस्तुओं पर लिखा था भय, कुछ वस्तुओं पर लिखा था गुणों की कमी, कुछ वस्तुओं पर लिखा था ईर्ष्या, कहीं पर लिखा था खितपिट। ऐसी लगभग 8 चीजें थी, परंतु एक वस्तु थी ऐसी कि जिसकी कीमत सबसे ज्यादा थी और वो कोई नहीं खरीद रहा था। कोई कोई थे ऐसे जो खरीद लेते थे, परंतु वो चीज शैतान ने सबसे महंगी रखी थी। ये सारी वस्तु इसने इसलिए बनाई थी ताकि लोग भगवान की ओर ना जाए। परंतु जैसे कहा कि एक वस्तु उसने ऐसी रखी थी कि जब उससे पूछा गया कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों, तो उसने कहा कि शरीर की बीमारी जो है वो ठीक भी हो सकती है और व्यक्ति फिर से भगवान की ओर चला जाए। जिसको नींद नहीं आती उसको नींद आ सकती है। जो अब बहुत सोचता है शायद कम सोचना चालू कर दे। जिसमें अब सहनशीलता की कमी है वो सहनशील हो जाए। जो अब डरता है शैतान से वो शायद डरना बंद कर दे। जिसमें अभी ईर्ष्या है शायद वो प्रेम पूर्ण हो जाए। जिसमें अभी खिटपिट है शायद वो मैत्री भाव धारण कर ले। परंतु एक चीज उसने ऐसी रखी है 8वें नंबर की कि वो यदि आ जाए तो फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। वो वस्तु कौन सी है? आज की मुरली से वो यदि आ जाए, वो कहता है मैं इसका यदि घूंट पिला दूं किसी को तो व्यक्ति भगवान के पास जाना ही भूल जाता है। ऐसी वो कौन सी वस्तु है कि वो आ जाए तो कुछ भी इच्छा नहीं होती, वो याद आ जाए तो जीवन में दुख समा जाता है। वो कहता है शैतान मैंने इस एक वस्तु को बचा के रखा है, सबसे कीमती है ये। जब मेरे सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं, बेकाम हो जाते हैं, तब मैं इस वस्तु का प्रयोग करता हूं। वो कौन सी वस्तु है? वो कौन सी वस्तु है जो पिला दी जाए तो भगवान से दूर हो जाते हैं? आज की मुरली से। निराशा, अपसेट, उदास, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें व्यक्ति जब चला जाता है तो कुछ भी करने की उसे इच्छा नहीं होती है। क्या इस निराशा से भी मुक्त हुआ जा सकता है? तो आज हम आज की मुरली पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसमें बाबा ने 8 बीमारियां कहो, चीजें कहो, वस्तुएं कहो, उन पर चर्चा की है। और भगवान के लिए गायन है कि भगवान बहुरूपी है, उसके साथ भिन्न भिन्न संबंधों से हम याद कर सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं। तो आज की मुरली की चर्चा करते हैं ऐसे बाबा के साथ 12 संबंध। उन 12 संबंधों में बाबा ने 8 जिसको हमने कहा बीमारियां कहो, उसका इलाज बताया है, या समस्याओं कहो, समस्या कहो, जिसका हल बताया है। और बाबा ने अपने 12 ऐसे अलग अलग रूप प्रकट किए हैं, या ऐसे 12 भिन्न भिन्न संबंध। मुरली है जनवरी मास की 1983, ओम शांति भवन का उद्घाटन है 18 तारीख को, मुरली 9 तारीख को चल रही है, और फरवरी मास में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अव्यक्त मास ये पार्श्व भूमि है मुरली की। और कहां चल रही है ये मुरली? यहीं पर जहां हम सब आज बैठे हुए हैं, यहीं पर वो भी बैठा था। और उसके ऐसे 12 रूप, उसकी हम थोड़ी सी आज की मुरली के आधार से चर्चा करेंगे। उसका सबसे पहला रूप बाप का रूप, पिता का रूप। तो आज की मुरली में कौन किससे मिलने आया है? सबने मुरली सुनी भी है, पढ़ी भी है। कौन किससे मिलने आया है? बाप बच्चों से मिलने आया है। बाप किन बच्चों से मिलने आया है? पहला संबंध, हम ऐसे 12 संबंध गिनाएंगे तो बाबा कहते हैं ना, मुझे भिन्न भिन्न संबंधों से याद करो, केवल एक ही संबंध से याद नहीं करो, अलग अलग संबंधों से याद करो। तो पहला उसका संबंध है बाप का संबंध, बाप और बच्चे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए, उसमें भी कौन से डबल विदेशी बच्चे हैं? ये सारे कैसे हैं? ये सिकी लदे। बाइबल में बहुत सुंदर वर्णन है, जीसस क्राइस्ट ने कही है एक अनूठी कहानी, जिसमें वो कहते हैं कि एक पिता था जिसके 2 बेटे थे। पिता बहुत अमीर था, एक छोटा बच्चा, एक छोटा बेटा, एक बड़ा बेटा। छोटा बेटा कहता है कि मुझे अपनी सारी जायदाद चाहिए, मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो। पिता का तो दोनों पर समान प्रेम था, तो वो अपनी जायदाद का बंटवारा कर देते हैं और आधा आधा दोनों बेटों में बांट देते हैं। छोटा बेटा जो होता है वो प्रोडिगल सन जिसको कहा गया है, प्रोडिगल अर्थात फिजूल खर्ची करने वाला, सारे पैसों को उड़ाने वाला। तो वो सारे पैसे ले लेते हैं, कहीं दूर देश में चला जाता है और विकार, विलासिता का जीवन, शराब और इन सब में अपने सारे पैसे गवा देता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके पास जितने पैसे होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, वो कंगाल बन जाता है। एक समय तो ऐसा आता है कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। तो उसके मन में आता है कि मैं अभी कहीं जाकर किसी के घर नौकर का काम करूं। और उसके मन में और एक चीज आती है कि मैं कहीं और क्यों जाऊं, जबकि मेरे पिता इतने अमीर हैं, इतनी बड़ी उनकी जायदाद है, तो क्यों ना मैं अपने पिता के ही घर जाऊं और वहां पर नौकर का काम करूं, अपने पिता के घर। मेरे पिता ने तो मुझे बहुत प्यार से पाला था, पर मैं ही छोड़ के गया था, परंतु अब जब मैंने उनका सब कुछ लुटा दिया है, परंतु फिर भी वो रहम दिल है, शायद मुझे नौकर की भांति अपने घर में जगह दे देंगे, मैं नौकरी करूंगा उनके घर में, मांगूंगा नहीं कुछ। तो दिखाया है कि वो घर वापस लौटता है। जैसे ही पिता को ये खबर मिलती है कि मेरा बेटा घर आ रहा है, सारे घर को सजाया जाता है, संगीत बजाया जाता है, अच्छे अच्छे पकवान भोज तैयार किया जाता है, और वो जो बड़ा बेटा होता है जिसने बहुत मेहनत की है, मेहनत से पिता की जो संपत्ति थी उसका कई गुना बढ़ा दिया है, वो खेत में काम करते रहता है, तो कोई उसे आकर बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है और उसके लिए तुम्हारे पिताजी ने ऐसे ऐसे आयोजन किए, तो बड़ा दुखी होता है। आकर देखता है तो दिखाई देता है कि पिता स्वागत कर रहे, सामने जाकर सत्कार कर रहे, वो जो बेटा आया हुआ है अपना सब कुछ गवा कर, उसका संगीत बज रहा है, भोज तैयार हो रहा है, पकवान बन रहे है, दासियां स्वागत के लिए खड़ी है, और पिता अपने छोटे बेटे को गले लगा रहे हैं। जब बड़ा बेटा ये देखता है तो अपने पिता से कहता है, आपने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया, ना तो आपने आज तक मेरा कभी स्वागत किया, ना तो आपने मेरे लिए कभी ऐसा सत्कार किया, ना तो ऐसे कभी बाजे बजे, ऐसा क्यों, और जबकि मैं ही दिन रात यहाँ काम कर रहा हूँ। तो पिता बहुत उत्तर सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं, तुम तो मेरे पास ही थे, तुम तो मेरे आज्ञाकारी बच्चे हो, परंतु ये जो था खो गया था, लॉन्ग लॉस्ट, और अब मैंने इसे फिर से पाया है, नाउ फाउंड, ऐसा ये सिकिलदा बच्चा है, इसके लिए तो और अधिक प्यार मुझे देना होगा। तो आज बाप दादा किससे मिलने आए हैं? ऐसे सिकिलदे बच्चों से। कहां खो गए थे पता नहीं, विदेश में, पता नहीं किस सभ्यता में, किस संस्कृति में, किस देश में, किस भाषा में, किस विलासितापूर्ण जीवन में कहां डूब गए थे भोग और विलास में। और ऐसे डूबे हुए भटके हुए बच्चे बाप को यदि फिर मिले तो कितनी खुशी होगी, होगी ना खुशी। तो आज बाप दादा हर्षित होते हैं ऐसे बच्चों को मिलकर, कि जो बड़ा स्थान तो है ही, परंतु जो छोटे स्थान में भी अमूल्य रतन है, विशेष रतन है, चुने हुए रतन है, सेवा की जिनको लगन है, एक ही लगन है कि बाप की प्रत्यक्षता हो, इसके प्लान बना रहे हैं। सब धर्म की आत्माएं बाप से मिल जाए, जैसे हम भटकते थे, अब उनके मन में भी रहम है कि बाकी सभी को बाप से मिला है। तो ये कौन सा रूप है बाबा का? पिता का रूप है। और वो छोटे भाई सब कौन है, और बड़े भाई कौन है फिर? बड़े भाई कौन है? बड़े भाई हमारी दादिया। तो बाप दादा ऐसे विशेष रत्नों से मिल रहे हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों से मिल रहे हैं, ऐसे कल्प कल्प की पात्र आत्माओं से मिल रहे हैं, ऐसे सिकिलदे लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड चिल्ड्रन से मिल रहे हैं। तो ये उसका कौन सा रूप हुआ? पिता का रूप। दूसरा रूप बाबा का आज की मुरली से, मां का रूप। कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत सारे वीआईपीज आने वाले हैं। वो सब कौन है? वीआईपी। अंग्रेजी में कहावत है, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हर जो होता है कुम्हार, अपने जो बर्तन होते हैं उनकी बहुत तारीफ करता है। तो माँ जो होती है उसके जो अपने बच्चे होते हैं उनकी बहुत तारीफ करती है। वो है वीआईपी। और तुम कौन हो? वी आई पी, तीन बार वी। वो है वीआईपी। हमारे पास एक फोल्डर है 84 की कॉन्फ्रेंस का, 83 की तो नहीं है, 84 की कॉन्फ्रेंस का, जिसमें लिस्ट लिखी हुई है कि 83 में कौन कौन आए थे। उसमें डॉक्टर रॉबर्ट मुलर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे जब वो यूनियन यूनाइटेड नेशंस के, डॉक्टर रॉड्रिगो एक दूसरे वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, गुजरात के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, भारत के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जट्टी या बट्टी ऐसे कुछ नाम है वो, जट्टी जट्टी, तो ऐसे बहुत सारे लोग उसमें आए हुए हैं सब। स्वामी सच्चिदानंद एक यूएस के, ऐसे कुछ लोगों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। तो ये सारे वीआईपी आबू में आ रहे हैं, माउंट में आ रहे हैं, माउंट आबू में। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो सब है वीआईपी और उनके लिए ऐसा विशेष निमंत्रण आवश्यक है, उनको चांस देना है, नहीं तो वो अपना डिसरिगार्ड समझेंगे। ये भी एक सेवा का तरीका है बड़ी, और क्योंकि ऐसे लोग छोटी कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, वो तो तब आएंगे जब उनका नाम हो स्पीकर के लिस्ट में, वो तो तब आएंगे जब उनका नाम हो कि स्टेज पर उनको बिठाया जाए। परंतु बाबा हमसे क्या कह रहे हैं, मैं उनसे मिलने नहीं आ रहा हूं, मैं तो तुमसे मिलने आया हूं, मैं उनसे बात नहीं करता हूं, मैं तो तुमसे बात करता हूं। वो है वीआईपी और तुम हो वीवीवीआईपी। सभी इस पर चिंतन करें कि हम वीवीवीआईपी क्यों है। किसी ने हमको लिखकर भेजा 108 पॉइंट्स कि हम वीवीवीआईपी क्यों है, तो ये सभी के लिए होमवर्क, बाबा ने ऐसा क्यों कहा है। तो ये बाप का कौन सा रूप था, एक मां का रूप, बाबा का तीसरा रूप आज की मुरली से। बाबा एक चिकित्सक है, फिजिशियन, सुप्रीम फिजिशियन, परम चिकित्सक, भव वैद्यम वैद्यनाथ। बाबा ने देखा एक शरीर की बीमारी जब हो जाती है उसके लिए बाबा ट्रीटमेंट बता रहे। कौन सी ट्रीटमेंट बताई, यदि देह बीमार हो जाए, बॉडीली डिसीज आ जाए, इलनेस एलिमेंट आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करो। बाबा ने एक ट्रीटमेंट बताई है, ये बाबा का तीसरा रूप है आज की मुरली से। बाबा सुप्रीम फिजिशियन है, बच्चे बाबा को बीमारी बता रहे कि ये शारीरिक बीमारी है, तो बाबा ने एक इलाज बताया है, क्या करो क्या करो, खुशी में रहो। क्या कहो क्या करो, मन खुशी में नाचता रहे और ऐसा खुशी में नाचने वाला मन फिर शरीर को चलाए तो एक हो जाएगी दुआ और एक हो जाएगी दवा, खुशी और एक्सरसाइज। तो फिर ये शरीर यदि बीमार हो फिर भी मन डिस्टर्ब नहीं होगा। हैप्पीनेस एज पेन किलर, सबसे बड़ा पेन किलर कौन सा है, हैप्पीनेस। विज्ञान ने बहुत सारी दवाइयां इजाद की है, मेडिकल साइंस ने। एक दवाई जिस पर बहुत खोज चल रही है और जो कहते हैं कि ब्रेन में होती है, 92 से ही उसका खोज हुई है, आनंदामाइड उसे कहा जाता है, आनंद शब्द से निकला हुआ, मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट किया हुआ एक केमिकल होता है आनंदामाइड, जिसको कहा है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को जो दवाइयां होती है उसमें वो केमिकल होता है, जिसका नाम उन्होंने ये रखा है। तो खुशी, जब व्यक्ति खुशी में होता है तो उसके शरीर में, ब्रेन में कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जिससे उसके बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारा दर्द कम हो जाता है। खुशी का और शारीरिक बीमारी का बहुत गहरा संबंध है, बहुत सारे प्रयोग इसके ऊपर किए गए हैं। कहीं एक प्रयोग किया गया है जो कि अमेरिकन जर्नल में आया था, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन 2012। जिसमें 400 लोगों पर प्रयोग किए गए थे जिनको बहुत सारी बीमारियां थी और बहुत सारे दर्द थे, किसी को घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, पीठ का दर्द और क्रॉनिक पेन, लंबे समय तक चलने वाले वो दर्द थे। उनको उनके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए गए, उनका अटेंशन, किसी को कुछ काम दिया गया कि जर्नल, ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक ऐसी जर्नल है जिस पर लिखो कि जीवन में कौन कौन सी चीजों के लिए आपको धन्यवाद करना है, जो भी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ हुई। किसी को ये लक्ष्य दिया गया कि तुम अपने जीवन में जो भी अच्छा हुआ उसको याद करो, खुशी में आओ। किसी को दूसरों की मदद करने की का काम दिया गया ताकि उनका ध्यान अपने देह से दूसरी ओर हट जाए। ऐसे बहुत सारे, किसी को कोई एक जीवन का पर्सनल गोल दिया गया और पाया गया कि ये सारे जो मरीज थे पैलिएटिव केयर यूनिट में, उनके सबके दर्द कम हुए जैसा ही ध्यान दूसरी ओर बटा और ये लोग खुश होने लगे, नहीं तो अपनी उसी बीमारी में दुखी रहते थे। तो बाबा कह रहे खुशी क्या है, ऐसी एक दुआ है, एक्सरसाइज। इससे शरीर की भी एक्सरसाइज और मन की भी एक्सरसाइज। अगर शरीर बीमार भी हो तो भी मन डिस्टर्ब ना हो। एक तो बीमारी होती है, दूसरी होती है मृत्यु का भय। एक बीमारी का भय, एक मृत्यु का भय, ये दो भय व्यक्ति का पीछा करते हैं हमेशा। यूनान में बहुत सुंदर एक कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि एक वजीर होता है, दोपहर का समय होता है, उसका जन्मदिन होता है, तो घर में जश्न होते रहता है और उसमें बहुत संगीतज्ञ आया हुआ होता है, बहुत अच्छा पकवान बन रहा होता है और अचानक एक संदेशवाहक आता है राजा की ओर से और उसको कहते हैं कि आज शाम 6 बजे तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। आज शाम 6 बजे घर के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। जो संगीतज्ञ आया है वो वीणा अभी उसने उठाई थी तो हाथ उसके वहां से छूट जाते हैं। जो भोजन बनाने वाले होते हैं दुखी हो जाते हैं कि आज तो इनका जन्मदिन है और आज शाम को ही अचानक इनको फांसी चढ़ा दी जाएगी 6 बजे। परंतु वो वजीर कहता है अभी 6 बजने को बहुत समय है, संगीत को रोको नहीं, संगीत चलने दो, वीणा चलने दो और भोजन जो बनाना रोक दिया है उसको बनाना चालू रखो और जो इतना उत्सव हो रहा है उसको उत्सव को चालू रखो। फिर भी वो लोग जो उसके आसपास, क्योंकि बहुत प्यारा व्यक्ति होता है, बहुत सबको सुख दिया है, परंतु सब कहते हैं कि हम कैसे इसको स्वीकार कर ले। वो कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी मृत्यु की घड़ी में मैं दुखी होकर मरूं? जो संगीत चल रहा है उसको चलने दो, कितना अच्छा ना होगा कि ऐसे शुभ दिन पर मैं इस संसार से विदा लूं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं और संगीत चालू रहता है, उत्सव चालू रहता है, सारे मेहमान आते रहते हैं, 6 बज जाते हैं तो राजा खुद आता है देखने के लिए क्या हुआ, कैसी इसकी स्थिति है और देखता है कि यहाँ तो जश्न हो रहा है, यहाँ तो उत्सव हो रहा है, आश्चर्य होता है उसे देखकर। वजीर से पूछते क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है डर किस बात का, जब जाना ही है संसार से, जब मृत्यु आनी ही है तो क्यों ना खुशी खुशी से जाए, खुशी को क्यों छोड़े। तो राजा कहते हैं मैं ये क्या कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति कभी मर ही नहीं सकता, इसको मारना ही बेकार है। तो चाहे बीमारी आ जाए, चाहे मृत्यु हुई दस्तक दे हमारे द्वार पर, हमारी स्थिति कैसी हो, खुशी के महल बन जाओ लास्ट सीजन की मुरली। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बीमारी आ जाए, कैंसर आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए, जो होना है होने दो, खुशी नहीं छोड़नी है, ये भगवान उवाच है। तो बाबा का तीसरा रूप कौन सा है, फिजिशियन, सुप्रीम फिजिशियन, परम चिकित्सक, बाबा का चौथा रूप। बाबा आया है मनोरोग चिकित्सक के रूप में, साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक। बच्चों को एक बीमारी है नींद न आने की, इनसोम्निया जिसको कहते हैं, अनिद्रा जिसको कहते हैं। इस बीमारी के लिए संसार के मनोरोग चिकित्सक के पास जाओ तो क्या देते हैं, वो लोग नींद की दवाइयां देते हैं, अच्छी अच्छी, एक से काम नहीं हुआ तो दूसरी, दूसरी से काम नहीं हुआ तो तीसरी, बहुत दवाइयां है उनके पास। बाबा कौन सी दवाई दे रहे हैं। अगर नींद ना आए तो क्या करो, क्या करो, योग में बैठ जाओ, और क्या करो, बाप की महिमा के गीत गाओ, इतना खुशी से गाओ कि वो खुशी से दर्द जो है वो भाग जाए। कितनी अच्छी युक्ति बताई है। अगर नींद ना आए तो क्या करो, बाबा की महिमा के गीत गाओ, उसने हमें क्या क्या दिया है उसको याद करो। पर ऐसा ना हो कि ये याद करते करते तो बाबा कौन है, मनो रोग चिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट है वो, परम, हर बीमारी का इलाज उसके पास है, अनिद्रा का भी इलाज उसके पास है। अगला उसका रूप है मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट है वो। बच्चों में और एक बीमारी है, कौन सी, कंफ्यूज होने की, क्वेश्चन पूछने की और ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग अर्थात ज्यादा सोचना, बात छोटी सी परंतु सोच सोच के बड़ा कर दिया, जो है नहीं उसको छोटी बना दिया और जो छोटा है उसको बड़ा कर दिया। जबकि बाबा ने कहा है जो बड़ी बात है उसको छोटा करो और जो छोटा है उसको, छोटी बात को क्या करो, खत्म कर दो। तो जो बात है ही नहीं उस पे हम क्या करते हैं, छोटी बात बनाते हैं, और जो छोटी है फिर उसको बड़ा करते हैं, और फिर बड़ा करने के बाद उसका चिंतन, उसका मनन, उसका वर्णन, उसकी चर्चा कर करके क्या होते हैं, खुद ही दुखी होते हैं। जीवन में बहुत सारी बातें आती रहती है और जाती रहती है, बातों में प्रवाह है, परंतु हम उनको पकड़ के रखते हैं। बातें आई और गई पर हमने पकड़ के रखा है। बाबा ने इलाज बताया है, सोचो कम, क्या करो, सोचो कम। कहीं कहीं तो बाबा ने कहा है कि असोचता बन जाओ, जब तुम बाप की याद में रहोगे तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी बाप मैं करूंगा। छोटी छोटी बातें जीवन में होती रहती है, परंतु यदि हर बात को हम पकड़ ले और उसके बारे में दिन रात सोचते रहे तो कितने दुखी हो जाएंगे। मॉपसेंट नाम का एक लेखक है, फ्रांस में हुआ था, उसने बहुत बहुत प्रसिद्ध एक चीज लिखी है कभी, द डायमंड नेकलेस, जिस पर फिल्में भी बनी और बहुत सारे सीरियल्स भी बन गए। लिखा है एक गृहिणी है, एक महिला है, बहुत गरीब है, मैटिल्डा नाम की, पर उसको शौक है बहुत सारे गहने पहनने का या कुछ करने का, पर गरीब बहुत है, उसका पति तो बहुत ही गरीब है। और वो एक दिन एक पार्टी में जाना होता है तो उसकी एक बहुत रईस उसकी फ्रेंड होती है, उससे एक नेकलेस लेती है, हीरो का होता है वो, और वो पार्टी में कहीं गुम हो जाता है। लगभग उसकी कीमत 40,000 होगी, तो बहुत सारे पैसे, इतना उनको तनाव हो जाता है दोनों को, पति पत्नी को, अब कैसे दे वापस, तो बहुत जगह से उधार लेते हैं पैसे, 40,000 रुपए कैसे भी जमा करके 36,000 से लेकर वो नेकलेस उसकी जो फ्रेंड होती है उसको वो वापस देते हैं। कहानी में दिखाया है 10 साल के बाद, 10 साल में ये लोग दोनों लोन चुकते करते करते इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इतने लोगों से जो पैसा लिया है उधार, अब वो चुकतू करते 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 हालत खराब हो जाती है, गरीब हो जाते, कंगाल हो जाते हैं। और एक दिन अचानक वो जो स्त्री थी जिससे इसने वो नेकलेस लिया था वो मिलती है, वो पूछती है कि क्या हो गया तुमको, ऐसी हालत क्यों है तुम्हारी। तो वो उसको बताती है कि मैंने तुमसे जो नेकलेस लिया था वो गुम हो गया था, और जो वापस दिया था वो हमारा खरीदा हुआ दूसरा था, हीरो का। तो कहानी का एंड होता है, वो कहती है वो नेकलेस वो तो नकली था, 500 रुपए का भी नहीं था, और इनका जीवन पूरा 10 साल तक उसको चुकतू करने में चला गया। कितना अच्छा होता यदि बात तो बहुत छोटी थी, परंतु बाबा ने जो कहा ना, स्पष्ट कर दो, स्पष्ट करो, पूछो और स्पष्ट कर लो। ये तो एक उदाहरण दिया, यदि सत्य बोल दिया होता और स्पष्ट बता दिया होता तो ये जो जीवन के 10 साल पूरे जैसे खत्म हो गए। दिन रात वही चिंता, वही टेंशन, वही स्ट्रेस, पैसे वापस देने हैं, पैसे वापस देने हैं, छोटी सी बात परंतु बड़ी हो गई। तो बाबा ने क्या कहा, सोचो कम। सोचते ज्यादा हो तो शरीर पर असर होता है, खुशी गायब होती है, मन पर भी असर होता है। शरीर पर, मन पर असर, खुशी गायब, ओवरथिंकिंग की बीमारी। बात हो गई है, 10 साल बीत गए, अब तक सोच रहे हैं, छूट ही नहीं पा रहे उससे, उसी में जैसे उसके एक जाल में कैद हो गए हैं। यदि ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है तो इस जाल से स्वयं को स्वयं ही मुक्त करना है। स्पष्ट कर दो, बैठो बाबा के सामने, सारी बात उसको बताओ, और वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए उस बात से स्वयं को मुक्त कर दो। कब तक लेके चलोगे वही विचारधारा, वही व्यर्थ संकल्प? तो ये बाबा का कौन सा रूप था, मनो चिकित्सक कहो इसको, साइकोलॉजिस्ट। अगला रूप है बाबा का सद्गुरु का। अब सद्गुरु बता रहा है तुम्हें क्या सोचना चाहिए। एक तो साइकोलॉजिस्ट ने बता दिया कि सोचो कम, परंतु कैसे, वो कौन बताएगा अब, वो सद्गुरु बताएगा। तो यहां बाबा ने व्यर्थ और समर्थ की बात की है, कौन से संकल्प तुम्हें करने हैं स्थिति के लिए, योग के लिए, शरीर के लिए, और कौन से संकल्प नहीं करने हैं। कौन कौन से संकल्प नहीं करने हैं स्थिति के लिए, मेरा पार्ट कुछ नजर नहीं आता है, योग के लिए मेरा योग लगता नहीं, अशरीरी बनते नहीं, और शरीर के लिए कौन से व्यर्थ संकल्प है, पुराना शरीर, बेकार शरीर, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये ब्राह्मणों के महावाक्य है, शरीर आजकल साथ नहीं दे रहा है, करना तो चाहते हैं परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा है। और क्या क्या कहते हैं शरीर के लिए, क्या क्या कहते हैं आज की मुरली से, क्या कहते हैं, बैठ नहीं सकते, घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द पेट की बीमारी, आंखों की बीमारी, क्या कहते हैं और शरीर के लिए, पुराना शरीर है, बेकार शरीर है। बाबा ने उदाहरण दिया है बहुत सुंदर, किसका, घोड़े का। घोड़े को क्या कर रहे हो, चाबुक से मार रहे हो, चाबुक से मारोगे तो और ही तंग होगा, चाबुक से मारोगे तो और ही तंग। वो तो खुद तो सोचते ही है शरीर के बारे में, शरीर के प्रति निगेटिव विचार। दादी जान की कहती है कि मैं रोज अमृत वेले 5 मिनट अपनी देह को सकाश देती हूँ। एक बार याद है हमको कि दादी को कहीं जाना था, विदेश की यात्रा, दादी ने सब लोग, बड़े लोग सब मिलना हो गया, और दादी अपने कमरे से निकली और दादी की तस्वीर है, दादी की खुद की तस्वीर है सामने, तो दादी खड़ी हो गई अपनी तस्वीर के सामने, किस लिए, छुट्टी लेने के लिए। किस से छुट्टी, अपनी ही तस्वीर से कि मेरे शरीर आराम से जाना और आना। तो देह को भोग विलास में नहीं डुबोना है, परंतु उसको टॉर्चर भी नहीं करना है, उसको दुख भी नहीं देना है। और सबसे बड़ा दुख हम कब देते हैं, उपवास करके नहीं, उसके प्रति निगेटिव सोच सोच के और उसका वर्णन करके। सिर दर्द जाता ही नहीं, जैसे योग में बैठते सिर भारी हो जाता है, ऐसे कंप्लेंट लेकर आते हैं, क्या करूं पता नहीं, योग में बैठते और भूख लगती है, योग में बैठते और नींद आना चालू हो जाती है, मेरा योग नहीं लगता, मेरा तो कोई पार्ट दिख नहीं रहा है, कब से इधर ही खड़े, इधर ही है, एक ही डिपार्टमेंट में, पार्ट तो कुछ ज्यादा उज्जवल कोई दिख नहीं रहा है। विदेश में एक संत हुआ है, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, इटली का, उसने कितनी सुंदर बात लिखी है, जब वो मृत्यु शैया पर है, मृत्यु शैया पर है, वो अपने शरीर से बात करता है, हे मेरे शरीर तुझे लाख लाख धन्यवाद, मैंने तुम्हें व्यर्थ में ही इतना सताया, इतने उपवास किए और तेरे ही अंदर बैठकर मैंने प्रभु की इतनी साधना की, कभी तुझे धन्यवाद नहीं दिया। आज मृत्यु के समय जब प्राण स्तन से निकलने वाले हैं, अभी कुछ ही समय में मैं तुझे अंतिम बार और पूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूं। बाबा ने कहा है, क्या कहा, वाह वाह करो बलिहारी के, गीत गाओ, वाह क्या भाग्य है कि इस तन में बैठ के हमने उसको पाया। अपने देह को देह के प्रति निगेटिव विचार ना हो, देह के प्रति पॉजिटिव संकल्प। कितनी सूक्ष्म बात है और कितनी फिलोसॉफिकल बात बाबा ने कह दी है। ये घोड़े को तंग नहीं करो, बहुत प्यार से इसे चलाओ। बीमार पड़ता है तो कई लोगों की आदत होती है दवाई नहीं लेंगे, और जब ज्यादा हो जाएंगे तब फिर आएंगे। विरोध है, दवाइयों के प्रति नफरत है। और खुद ही खुद अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे दर्द में, पीड़ा में। और फिर जो योग का नुकसान हो रहा है उसका क्या, जो तपस्या नहीं हो रही है उसका क्या। बाबा ने कहा है ना, दवाइयों को क्या समझ के ले लो, फ्रूट समझ के ले लो, ज्यादा नहीं सोचो उसके बारे में, मुझे ही क्यों हुआ, बाकी लोगों को तो नहीं होता है। इतने लोग थे गाड़ी में, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा ही पैर फ्रैक्चर होना था, जबकि मुझे इतनी सेवाएं करनी है। तब सेवा कर रहे थे, अभी बैठो हॉस्पिटल में और अब मन से सेवा करो। वाह शरीर वाह, वाह व्याधि वाह। बाबा ने मुरलियों में कहा है, 95 की मुरली है, यदि किसी के घर में कोई मेहमान आता है और उसकी बहुत तारीफ की जाए तो वो बड़ी खुशी खुशी से विदा लेता है, वैसे अगर तुम्हारे शरीर में यदि बीमारी आ जाए तो क्या करो, उसको महिमा करो उसकी, तो बड़े प्यार से वो विदाई लेगी। वाह व्याधि वाह, वाह शरीर वाह। तो शरीर के प्रति निगेटिव संकल्प ना हो, यदि है तो उन्हें पॉजिटिव कर दो कि कितना सुंदर कि इस तन में बैठ के मैंने उसको पाया, कितना ये मूल्यवान देह है, बड़े भाग मानुष तन पावा, गायन है, कितना मेरा भाग्य है कि इतने 84 देह में, उस देवता का देह तो था एक समय, पर क्या उस देह में बैठ के भगवान को पाया था क्या, वो कंचन काया थी तब, पर क्या उस तन में भगवान को भगवान मिला था, भगवान किस देह में मिला, इस तन में मिला, चाहे कैसा भी है, काला है, गोरा है, बौना है, लंबा है, बीमार है, स्वस्थ है, जवान है या बूढ़ा है, ये नहीं कि बूढ़ापा क्यों आ रहा है, सब होगा, परंतु बुढ़ापे का संबंध और जवानी का संबंध देह से नहीं है, आत्मा से है। आत्मा बूढ़ी ना हो जाए, आत्मा में वह यौवन हमेशा रहे, वह फूल खिलते रहे। तो ये कौन सी बात कही, बाबा का सद्गुरु का रूप। सद्गुरु क्या करते हैं, बताते हैं तुम्हें सोचना क्या है, कैसे सोचना है, व्यर्थ नहीं सोचो, हलचल में नहीं लाओ व्यर्थ सोच सोच के, समर्थ संकल्प करो अपनी देह के बारे में, स्थिति के बारे में, योग के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। रामायण में दिखाया है दशरथ सफेद बाल हो जाते हैं, आईने में एक बार देखते देखते देखता है, मेरे तो बाल सफेद हो गए, अब तक कोई पुत्र नहीं है, राज कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास, और उसको कहते हैं, ये नहीं कहते कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे कोई पुत्र दे दो, ये नहीं कहते। उसमें दिखाया है ऐसा कुछ कहो, जाई विधि होई नाथ हित मोरा, ऐसा कुछ मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो जाए। तो भगवान से ये नहीं कहो कि क्या, सद्गुरु है ना वो, कि ऐसा कोई मार्ग जिससे मेरा हित हो जाए, खुद ही अपना ये नहीं कहो कि मैं ये करना चाहता हूं, वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी इच्छा है, वो उत्तर देगा। तो ये रूप कौन सा है? सद्गुरु का रूप। अगला रूप उसका, अगला रूप है उसका सुप्रीम कमांडर का रूप। बच्चे कहते हैं बाबा माया से डर लगता है, तो सुप्रीम कमांडर सिखा रहा है क्या करना है तुम्हें माया के साथ, डरना है उससे कि क्या करना है, क्या करो माया से, उससे पाठ पढ़ो। ये सभी के लिए होमवर्क है, कौन कौन सा पाठ हमें माया से पढ़ना है। बाबा ने तीन तो बता दिए, एक सहनशीलता का पाठ पढ़ो, दूसरा एक स्थिति कैसे हो उसका पाठ पढ़ो, तीसरा शांत स्वरूप स्थिति में कैसे रहे। अगर परिस्थिति ही नहीं आए तो कैसे पता चलेगा, जो हमने सीखा है इस विश्वविद्यालय से उसको प्रैक्टिकल में लाना, तो ही तो कहा जाएगा कि हमने ये पाठ सीखा है, तो ही तो कहा जाएगा कि हम योगी है। समर्थ संकल्प में एक बात हम भूल गए हैं, बाबा ने कुछ समर्थ संकल्प वहां पर दिए कि मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, और कौन सा समर्थ संकल्प दिया है। ये तो याद क्या है, हमारा स्वधर्म है, बाप बच्चों का तो धर्म ही है बाप को याद करना। मैं ही कल्प कल्प की सहज योगी आत्मा हूं, चार शक्तिशाली संकल्प दिए है, यदि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। इस तरह के बहुत सारे और संकल्प लिखे जा सकते हैं, जो लिखना चाहे लिखे, यदि मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मैं अचल अडोल नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, इस तरह से चिंतन किया जा सकता है। तो यहां हम बात कर रहे थे अभी सुप्रीम कमांडर की। तो माया क्या करने आती है, उसको दुश्मन नहीं समझो, उसको सहयोगी बना लो, उससे सीख लो। सुप्रीम कमांडर हमें ये पाठ सिखा रहा है, लड़ाई नहीं करो। एक है लड़ाई, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है अतिक्रमण, ऐसे तीन शब्द है। एक है लड़ाई, जैसे हम लड़ाई कर रहे कर रहे कर रहे कब तक। दूसरा है उससे मुक्त हो जाना, जैसे क्रोध से मुक्त हो गए, काम से मुक्त हो गए। तीसरा है उसके परे निकल जाना, काम विकार अब नहीं सताता, काम से परे निकल चुकी है आत्मा, क्रोध से परे निकल चुकी है, लोभ से परे निकल चुकी है, सारे विकारों से परे निकल चुकी है। ऐसी कुछ युक्ति बना करनी है कि जो भी परिस्थिति आए या जो भी व्यक्ति आए उसको उससे सीख लेना है, उसको सहयोगी बना लेना है, उससे सीख कर आगे बढ़ जाना, ना कि लड़ाई करते रहना। तो ये उसका कौन सा रूप है, सुप्रीम कमांडर का रूप। उसका अगला एक रूप है, वो है क्रिटिक। क्रिटिक अर्थात समीक्षक, अर्थात जो समीक्षा करे, एनालिसिस करे, क्रिटिकल एनालाइजर बाबा का ये रूप है। बाबा ने डबल विदेश योग की एनालिसिस किया, यहां पर समीक्षा की है कि ये लोगों में एक खासियत है, बहुत ऊपर उड़ते हैं, बहुत ऊंचा उड़ते हैं, परंतु एक दोष भी है, छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं, फ्लाइंग और स्मॉल फ्लाई उससे डर जाते हैं। और इन सब का एक फाउंडेशन बाबा ने बताया, वो क्या है, सहनशीलता की कमी। वो तो कह दिया शुरुआत से ही कम है, क्या कहा, शुरुआत से ही कम है, और दोष देते हैं, व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, स्थान को बदलना चाहते हैं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, जगह बदल दो, कमरा बदल दो। यहां एक रावण है, जहां जाओगे वहां दस होंगे। संसार में एक सूफी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति होता है, बहुत दुखी होता है, एक सूफी संत, सन्यासी तो हो गया होता है पर दुखी बहुत होता है, भगवान से रोज कहता है कि सारे दुख तुमने मुझे ही दिए, ये देखो बाकी सारे कितने सुखी है संसार में सारे लोग, और सारे दुखी, सबसे दुखी मैं ही हूं। एक दिन रात में सोता है और एक स्वप्न देखता है, स्वप्न में दिखता है उसे कि भगवान ने घोषणा कर दी है कि जो जो दुख तुम्हारे पास है एक एक थैली में भरो और मंदिर के पास आ जाओ लेकर। तो संसार के सारे लोग अपने दुख भर भर के पोटली में भर भर के, थैलियों में भर भर के मंदिर में पहुंचते हैं। फिर से एक घोषणा होती है कि सामने जो दीवार है अपनी अपनी थैली सामने रख दो, और फिर से एक घोषणा होती है अब जो थैली तुम चाहते हो वो ले सकते हो, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे दुख बहुत ज्यादा है, बाकियों के कम है। तो वो व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि मेरी थैली तो सबसे छोटी दिख रही है, मैं क्यों दूसरों की थैली लूं, और यदि मैं लेता हूं पता नहीं उसमें कौन से दुख है, अपरिचित, अज्ञात, मेरे दुख फिर भी तो कितने समय से मेरे साथ चल रहे हैं, परिचित है। तो वह जाके भागता है इससे पहले कि उसकी थैली कोई और ले ले, परंतु वो ये भी देखता है कि हर एक अपनी अपनी थैली ले रहा है, कौन किस झंझट में पड़े, क्योंकि दूसरों की थैलियां तो बहुत बड़ी पड़ी है, पता नहीं उसमें कैसे कैसे दर्द, पीड़ा और क्या क्या है। तो वो जाता है, अपनी थैली लेता है और उसकी आंख खुलती है, धड़धड़ धड़धड़ पसीना, और कहता है धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने दुखी ठीक है। सहनशीलता की कमी, सेंट फ्रांसिस के बारे में कहा, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, वो अपने शिष्य के साथ जाते रहता है, लियो उसका शिष्य होता है, शिष्य को वो कहता है सैन मेरिनो, इटली की बॉर्डर पर एक जगह है, उसकी यात्रा पर वो जाते रहता है। तो वो फ्रांसिस अपने शिष्य से कहता है, क्या तुम्हें पता है सच्चा साधु कौन है, साधुता किसे कहा जाता है, व्हाट इज होलीनेस, लियो डू यू नो, सच्ची साधुता वो नहीं है कि संसार का त्याग कर दो, अंधेरी रात होती है, घना जंगल होता है, दोनों भूखे प्यासे और ये वार्तालाप चल रहा है। वो कहता है क्या तुम्हें ये पता है सच्चा साधु कौन होता है, वो नहीं कि जो संसार का त्याग कर दे, वो नहीं कि जो अंधे को आंख दे दे, वो नहीं जो मरे हुए को जिंदा कर दे, वो नहीं जो जो अस्वस्थ है, रोगी है, उसको ठीक कर दे, वो नहीं कि जो संन्यास ले ले, ऐसी चर्चा चालू रहती है। तो वो लियो इतना परेशान हो जाता है, फिर सच्चा साधु है कौन आखिर, तब तक गांव आ जाता है। तो वो कहता है कि देखो अभी हम जाएंगे, वहां पर एक सराय है, उस सराय में हम लोग खटखटाएंगे, फिर व्यक्ति बाहर आएगा एक, और वो कहेगा तुम दोनों आ गए फिर से, तुम दोनों भीख मांगे, और वो हमको बहुत गालियां देंगे, हम उनसे कहेंगे कि हमको एक रात के लिए, हम एक दिन के लिए रुकने दे दो, रुकने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दो, तो वो हमको बहुत गालियां देंगे, तुम मुफ्त खोरे खोरो फिर से इधर आ गए, और हमको निकाल देगा बाहर। उसके बाद में थोड़े देर के बाद हम फिर ठकठकाएंगे, और फिर वो तो डंडा लेकर ही हमें मारने आ जाएगा। और ऐसी सारी अवस्थाओं में जब हमारे मन में उसके प्रति कुछ भी निगेटिव नकारात्मक भाव उत्पन्न ना हो, और जो आनंद की अवस्था में अभी हम है वही अगर रहे, तो दैट इज नोन एज होलीनेस, वो है साधुता, उसको कहेंगे साधुता, ऐसी सहनशीलता। तुकामने संत सोसी जगाचे आघात, जो जग के आघात सहन करे वो है संत। बाबा कह रहे सहनशीलता का अवतार बन जाओ, क्या हो जाओ, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। तो ये है उसका समीक्षक का रूप, उसका अगला रूप। बाबा आया है एक जिसको कहते हैं फैमिली या पर्सनल काउंसलर बनकर, बाबा के सामने एक समस्या रखी गई है, खिटखिट होती है दो बगुलों के, बगुला और हंस के बीच। तो बाबा ने यहां पर परामर्श दिया है क्या किया जाए। तो वो कौन है यहां पर, फैमिली काउंसलर, परामर्शदाता। वहां पर बहुत सारी चीजें बताई है, एक यदि जो एंटी आज है, चार बातें बताई है, जो आज एंटी है हो सकता है वो कल शुभ भावना का ट्रायल करते रहो तो वो सहयोगी बन जाएंगे। पति पत्नी की बातें यहां, फैमिली कहो या इसको कहो मैरिज काउंसलर, बाबा मैरिज काउंसलर बन के आए या फैमिली काउंसलर। तो यदि खिटखिट है तो हो सकता है वो सहयोगी बन जाए, शुभ भावना से जो निमित्त है उससे भी आगे चला जाए, एक। दूसरा है हो सकता है कि वो अगर उसको ऐसे ही छोड़ दो तो डिसर्विस हो जाए। यदि तीसरी अवस्था वो है कि जिसमें जो आत्मा आई है अगर छोड़ दिया जाए तो अवगुण जो है उसके अवगुणों की वजह से, उसकी कमी की वजह से जो आत्मा आने वाली है फ्यूचर में, वो भी वंचित हो जाए भाग्य से। और चौथी एक अवस्था बताई, वो एक महत्वपूर्ण है। यदि आपने आज छोड़ दिया, वेरीफाई नहीं किया, बड़ों से वेरीफाई करने को कहा और ऐसे ही छोड़ दिया, शरीर से तो अलग हो गए, बाद में याद आती रहती है। डिवोर्स हो गया, बाद में उससे मिलना चालू है तलाक के बाद। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, क्योंकि शरीर से तो अलग हो गए परंतु मन तो एक दूसरे में फंसा है, व्यक्ति व्यक्तियों में। तो ये चार अवस्थाएं है बाबा ने कहा, ट्रायल करो, वेरीफाई करो, कर्म फिलॉसफी के स्वरूप को समझो, ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और फिर वेरीफाई करो। तो बाबा का ये कौन सा रूप है? मैरिज काउंसलर, या कहो फैमिली काउंसलर। उसका अगला रूप है स्पिरिचुअल काउंसलर। उसमें बाबा के सामने एक समस्या भी रखी गई, फिर से ईर्ष्या वाली, क्योंकि कभी हमने क्लासेस में सुना है, ये जब कॉन्फ्रेंस हुई थी 83 की, तो कॉन्फ्रेंस हुई तो सबने जी जान लगा दिया था ये कॉन्फ्रेंस के लिए, एक एक वीआईपी के पीछे कितने सारे भाई बहने थे। परंतु बाद में जो स्पीकर थे उनकी बड़ी महिमा हो गई, जो स्टेज पर थे, और बाकी जो छोटे छोटे बाकी जो सारे काम करने वाले थे, सेवा करने वाले थे, उनके अंदर लगा, देखो हमारा तो कोई नाम ही नहीं हुआ। तो बाबा क्या कहते, यदि कोई इसको ड्यूटी क्यों दे गई हो दी, या ये सर्विसेबल बनाया गया, इसको टीचर बनाया गया, क्या सोचो, उसको निमित्त किसने बनाया? अच्छा, उसको निमित्त किसी टीचर ने बनाया, उस टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? तो यदि ईर्ष्या आती है तो क्या करो, बीच में बाप को रख दो। ईर्ष्या आती है तो ये सोचो इसको निमित्त किसने बनाया, ईर्ष्या आती है तो ये सोचो कि इसमें जो विशेषता है, क्यों ना हम उस विशेषता को धारण करें। ईर्ष्या एक ऐसा अवगुण है, बहुत सूक्ष्म। मनोवैज्ञानिक कहते हैं स्त्री और पुरुष के लिए, ऐसा सत्य नहीं है, परंतु स्त्री में यदि एक नंबर वन उनका अगर शत्रु है वो है ईर्ष्या, और पुरुष का यदि नंबर वन शत्रु है वो है अहंकार। परंतु पुरुष भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं है और स्त्रियां भी अहंकार से मुक्त नहीं है, परंतु अधिकांश उन्होंने बताया है इस तरह की बातें। तो ईर्ष्या यदि आती है तो जिससे ईर्ष्या, बाबा ने कहा रीस नहीं करो, रेस करो। उसमें यदि विशेषता है, वो विशेषता मुझे धारण करनी है, और अच्छा उसमें जरूर कुछ विशेषता होगी, उस विशेषता के वजह से वो आगे गया है, और उसको निमित्त बनाने वाला कोई और है, भगवान स्वयं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो बाबा का कौन सा रूप है ये? स्पिरिचुअल काउंसलर। दसवा, ग्यारहवा उसका एक रूप है, और जो हमने कहानी में शुरुआत में कहा था कि शैतान ने सबसे ज्यादा कीमत जिसके ऊपर लिख रखी है, और जब व्यक्ति ये सारे उसके अस्त्र फेल हो जाते हैं, ये सब होते हुए भी भगवान के पास कोई पहुंच जाता है तो उसको क्या कर देता है, वो अपसेट, निराशा में डाल देता है, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में। और जब अवसाद आ जाता है, निराशा आ जाती है, तो व्यक्ति सब कुछ करना छोड़ देता है, भूल ही जाता है, कुछ इच्छा नहीं होती, ना पुरुषार्थ करना है, ना सेवा करना है, ना मुरली पढ़ना है, बस नेमिनाथ गए, मुरली सुनी, आ गए। उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, संगीत नहीं है जीवन में, वो स्वर नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है, पता नहीं कहां खो गई और किसी अज्ञात जगह पर वो छोड़ा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, वो है बाबा का टीचर का रूप। यहां बाबा सिखा रहे हैं कर्म फिलॉसफी के सिद्धांत को एज अ टीचर। यदि अपसेट हो जाते हो, पहले तो वेरीफाई करो, पूछो मेरी किस भाव से आपने ये कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, तो निश्चिंत हो जाओ। और टीचर का रूप बाबा ने कहा ब्राह्मणों के हिसाब किताब। किसके द्वारा चुकतू होंगे? बाहर वालों के द्वारा? अज्ञानियों के द्वारा? किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होंगे। ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, एक एक ब्राह्मण आत्मा। धर्मराजपुरी से बचने का ये साधन है, यही चुकतू हो जाए तो अच्छा है। हमारा साथी, हमारा सीनियर, जूनियर या आसपास वाले डिपार्टमेंट वाले, इन्हीं के साथ सारे हिसाब किताब चुकतू होने हैं। सेंटर के साथ ही ऊपर नीचे सारे ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकतू होंगे। तो ये बाबा कौन सी फिलॉसफी सिखा रहे हैं? कर्म सिद्धांत एज अ टीचर। और बाबा का अंतिम 12वां रूप है वो है परम माशुक, जिससे बाबा ने एक वायदा करने को कहा है। प्रॉमिस करो। कौन सा प्रॉमिस करो? छोटी छोटी बातों में प्रॉमिस की जाती है ना माशुक से, वादे करते, बड़े बड़े वादे करते एक दूसरे से, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, खून से लिख कर देते हैं, मर जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बाबा ने कहा माशुक के साथ एक प्रॉमिस करना है। कौन सा? ये बाबा के साथ का 12वां संबंध, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, परंतु वो बनेंगे जो प्रॉब्लम को हल कर दे। तो ऐसे टोटल बाबा के 12 संबंध। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला संबंध बाबा के साथ बाप का, किन बच्चों से मिल रहा है? सिकिलदे बच्चों से मिल रहा है। विशेष रतन, अमूल्य रतन, चुने हुए रत्नों से वो मिल रहा है। कल्प कल्प की जो पात्र आत्मा है, कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा है, सारी धर्म की आत्माओं को बाप से मिलाने वाली जो आत्मा है, ऐसे सेवा के सफलता का प्लान बनाने वाली, सेवा की लगन में रहने वाली आत्माओं को बाप दादा मिल रहे। पहला संबंध बाप का। दूसरा संबंध, मेरे बच्चे कैसे हैं? माँ का रूप है उसका, वो है VIP और तुम हो VVVIP, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड। तुमसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। बाप की हुज हु की लिस्ट में, डिक्शनरी में तुम्हारा नाम है। उसका तीसरा रूप सुप्रीम, क्या तीसरा संबंध? एज अ चिकित्सक, कौन सी? शरीर की यदि बीमारी है तो इलाज बाबा ने बताया एक्सरसाइज और हैप्पीनेस, खुशी। फिर है वो साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक, कौन सी बीमारी है? अनिद्रा की, तो याद में रहो, खुशी में नाचते रहो, याद करते रहो और दर्द भूल जाएगा। उसका अगला रूप है साइकोलॉजिस्ट, कौन सी बीमारी ठीक कर रहा है? कंफ्यूजन की, ओवरथिंकिंग की, क्वेश्चंस की। उत्तर बताया, कम कर दो, सोचो कम। उसका अगला रूप है सद्गुरु। फिर सोचना क्या है? तो समर्थ संकल्पों की रचना करो। अभी निगेटिव है, अभी समर्थ की रचना करो। कौन से समर्थ संकल्प करो? यदि ये निगेटिव संकल्प 10 साल से चल रहा है, क्या इसका कोई तोड़ है? क्या ऐसा कोई संकल्प है? यदि नहीं मिल रहा है तो किसी से पूछो कि ये निगेटिव संकल्प की धारा है, कैसे काटे इन संकल्पों की धारा को? पॉजिटिव से काटो, समर्थ से काटो। अगला रूप है उसका सुप्रीम कमांडर। माया से घबराना नहीं है, उससे पाठ पढ़ना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। अगला है उसका समीक्षक। समीक्षक क्या करता है? पॉजिटिव भी बताता है, निगेटिव भी बताता है। उसमें उसने क्या बात बताई? कि सहनशीलता की कमी है। हम चाहते हैं व्यक्ति और स्थान को बदले, स्वयं को बदलने की प्लानिंग बनानी है। 21 दिन रह गए बाबा आने के, 8 तारीख को बाबा आ रहे, 21 दिन का प्लानिंग हर एक को बनाना है। अगला क्या करता है? वो काउंसलर है, मैरिज काउंसलर या फैमिली काउंसलर। उसमें बता रहा है कि अगर खिटखिट है, खिटपिट है, तो क्या क्या करो, ये चीज करो, एकदम नहीं तोड़ दो, प्यार से शुभ भावनाओं की फुल ट्रायल करो। क्या शब्द प्रयोग किए बाबा ने? फुल ट्रायल करो। झगड़ते नहीं रहो बस, क्योंकि झगड़े का कोई कारण नहीं होता है। जैसे एक दिखाया है, पति पत्नी झगड़ रहे, कितने घंटे बीत गए, पड़ोसी आ गए छुड़ाने के लिए, कहते हैं कि क्यों झगड़ रहे हो? तो पत्नी कहती है, पति कहता है मुझे क्या पता, इससे पूछो। तो पत्नी कहती है मुझे क्या पता, 3 घंटे पहले लड़ाई चालू हुई थी, तो कारण भी भूल गया अब तक, तो अकारण ही है सारे झगड़े, बस झगड़ना है इसके लिए झगड़ रहे क्यों झगड़ रहे हैं वो पता ही नहीं क्यों झगड़ रहे, बस झगड़े कर रहे हैं। बाबा का अगला रूप है स्पिरिचुअल काउंसिलर। कौन सी काउंसिलर कर काउंसिलिंग कर रहा है? ईर्ष्या। ईर्ष्या भी पाप है, बाबा ने कहा बाप है या तो पाप है, तो किसको बीच में रख दो? बाप को बीच में रख दो। शुभ भावनाओं को नहीं छोड़ो। यदि कोई आगे बढ़ रहा है, यदि हम, सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं कोई आगे बढ़ रहा है और हम उससे ईर्ष्या करते हैं, तो सफलता भी हमसे ईर्ष्या करेगी, वो हमारे पास नहीं आएगी, हम में वो प्योरिटी की पावर भी नहीं भरेगी। तो यदि सब आगे बढ़ रहे, बाबा ने कहा ना पहले आप ये पार्ट यहां पक्का करो, सबको आगे बढ़ाना, इसी में आगे बढ़ना है। उसके बाद में है बाबा का कौन सा रूप? टीचर का रूप, टीचर बनकर वो सिखा रहा है कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी क्या होती है। इसके लिए यहां दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग मुझे इतना तंग करते, परेशान करते हैं, हमारे ही जन्म जन्म के सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। और उसका अंतिम रूप है जिसके साथ में हमें वायदा करना है, वो कौन सा? तो अभी 21 दिन बाकी है, बाबा आएंगे, बाबा के सामने हम बैठे होंगे, तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। उसके लिए जो 8 प्रकार के रोग आज बाबा ने गिनाए, 8 प्रकार के रोग गिनाए, 12 उसके रूप बताए और 8 प्रकार की ट्रीटमेंट उसने बताई, तो यहां पर उसके साथ प्रॉमिस करना है। कौन सा प्रॉमिस करेंगे? तो सभी योग में बैठ जाएंगे अभी, क्लास को पूरा इसी प्रॉमिस के साथ अपने मन ही मन बाबा से वायदा करेंगे कि छोटी छोटी बातों में क्या नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम स्वरूप नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम का हल करेंगे। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने यहां याद प्यार दिया नहीं है, परंतु हम याद प्यार बना सकते हैं ऐसे मुरली में, शायद आगे होगा, हमने तो पढ़ी नहीं आगे की, आगे बहुत सारे ग्रुप से मिल रहे ऐसे VVVIP बच्चों को, ऐसे कल्प कल्प की पात्र आत्माओं को, ऐसे सहनशीलता की अवतार आत्माओं को, ऐसे शरीर को बड़े प्यार से चलाने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे अब आप बताओ बाकी के ईर्ष्या मुक्त आत्माओं को, ऐसे खुशी में नाचने वाली आत्माओं को, ऐसे माया से न डरने वाली और माया को सहयोगी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे मुरली से ऐसे सहज योगी आत्माओं को, ऐसे ऐसे बाप से वायदा करने वाली आत्माओं को और निभाने वाली आत्माओं को, प्रॉब्लम का हल करने वाली आत्माओं को, ऐसे मुरली सुनिए सब बताओ, सिकी लदे बच्चों को, अमूल्य रत्नों को, विशेष रत्नों को, चुने हुए रत्नों को, कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। सभी बैठेंगे और 21 दिन के लिए वायदा करेंगे बाबा से। ओम शांति।